ভবে প্রেম প্রদীপে আরতি তোমার, ভবে প্রেম প্রদীপে আরতি তোমার, নয়নে যমুনা জরয়নি বার, নয়নে যমুনা জরয়নি বার, তোমার বিরহ গিরিধারী, তোমার বিরহ গিরিধারী, বন্দন গণ তব ভজুক জীবন, বন্দন গণ তব ভজুক জীবন, কৃষ্ণ মুরারি শ্রী কৃষ্ণ মুরারি, কৃষ্ণ মুরারি শ্রী কৃষ্ণ মুরারি,
Yamuna Teera Vanachari
गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द
परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुल आनंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातनुं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमवलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर चार वर्ष बाद पुनः जो बलराम जयंती और जन्माष्टमी के बीच में कृष्ण कथा हुआ करता था उसको पुनः आरंभ कर रहे हैं। कथा पिछली बार यहां रुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के या ब्रज के यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की थी। जब श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गौओं को चरा रहे थे तो ग्वाल बालों को बड़ी भूख लग गई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि कुछ व्यवस्था कीजिए, आप समर्थ हैं। तो कृष्ण ने ग्वाल बालों को पास में ही ब्राह्मणों के पास भेजा जो कि वहां एक बड़ा यज्ञ संपन्न कर रहे थे। उनसे मांगो मेरे नाम से कि कृष्ण बलराम कुछ भोजन चाह रहे हैं, प्रसाद चाहते हैं। ब्राह्मणों ने सही तरह से उत्तर नहीं दिया तो निराश होकर बच्चे फिर से चले आए कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा उनके पत्नियों के पास जाना। जब उनके पत्नियों के पास गए तो पत्नियों ने तुरंत ही जो भी कुछ सामग्री उनके पास थी वो सब बच्चों को दे दिया कि ले जाओ कृष्ण और बलराम के लिए। ये पत्नियां जो थीं, यज्ञ पत्नियां, ये वास्तव में भक्त बन गई थीं भगवान श्री कृष्ण की, शुद्ध भक्त, केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से, जैसे कि रुक्मिणी देवी हुई थी। उन्होंने पहले कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल सुना था श्री कृष्ण के बारे में और सुनकर ही वो शुद्ध भक्त बन गई थी। तो श्रवण का कितना महत्व है इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं। जब यज्ञ पत्नियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास आई सारी सामग्री लेकर तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि अब लौट के चले जाना क्योंकि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के सदस्य आपकी राह देख रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे आना ठीक नहीं है। तो ब्राह्मणियों ने कहा कि अब हमने तो सारे संबंध तोड़ दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आए हैं तो अभी अभी आप हमें भेजिए मत वापस। तो श्री कृष्ण ने उनको अच्छे उपदेश दिए, हर दृष्टि से उनको समझाया। गोपियां और यज्ञ पत्नियां दोनों श्री कृष्ण के पास आए थे सब कुछ छोड़ के, दोनों को श्री कृष्ण ने समझाया कि वापस चले जाओ। यज्ञ पत्नियां चली गई, गोपियां नहीं चली गई। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने फिर रासलीला की थी, परंतु यज्ञ पत्नियां मथुरा और वृंदावन के बीच में रहा करती थी और वो मान गई। और विशेष करके जब भगवान ने उनसे कहा श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहाण, वो कहते हैं कि जितनी भक्ति या जितना प्रेम मेरे प्रति आपको श्रवण से प्राप्त होगा, श्रवणात् दर्शन, मेरे विग्रह के दर्शन से प्राप्त होगा, दर्शनाद मेरे बारे में ध्यान करने से प्राप्त होगा, ध्यानाद मेरे बारे में कीर्तन करने से प्राप्त होगा, अनुकीर्तनाद, अनुकीर्तनाद मतलब बार बार निरंतर कीर्तन करते रहना, भगवान के बारे में बोलते रहना, उनके नामों का उच्चारण करते रहना। मई भावो, तो मेरे प्रति जो भक्ति भाव है वो इन चीजों से अधिक जागृत होगा। न तथा सन्निकर्षेण, लेकिन मेरे प्रत्यक्ष सानिध्य को प्राप्त करके भी इतनी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो अगर आप सोचते हो कि केवल आप मेरे पास में रहोगे और आपकी भक्ति बहुत शुद्ध हो जाएगी तो यह आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से मेरे दूर भी, मुझसे दूर भी रहोगे परंतु मेरे बारे में सुनोगे, मेरे बारे में बोलोगे, मेरे में स्मरण करोगे, मेरा ध्यान करोगे, तो ये पथ अपनाने से तुम्हारी भक्ति में प्रगति अधिक होगी। बहुत शीघ्र ही तुम मेरी भक्ति प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए प्रतियात ततो गृहान, इसलिए अपने अपने घरों में, गृहों में लौट के चले जाओ। हम देखते हैं ऐसे कितने सारे घटनाएं हैं। काल कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा में गए, लेकिन वहां पर उनका पतन हो गया। हालांकि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ 24 घंटे रहा करते थे। तो ऐसे भगवान के सानिध्य में रहने से भी अगर हमने श्रवण कीर्तन ध्यान आदि का पथ अपनाया नहीं है गंभीरता से, तो ये कोई निश्चित नहीं है कि हम भक्ति में टिके रहेंगे। इसलिए भक्तों के संग में आकर, बार बार आकर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण ध्यान आदि करने को सीखना ये अति आवश्यक है, और ये संग के बिना संभव नहीं है। कुछ हद तक हम ये घर में कर सकते हैं और करना चाहिए। हर एक दिन हमें घर में संकीर्तन करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को बैठकर, सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बैठ के संकीर्तन करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रभुपाद के ग्रंथों से पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए, और भगवान की सेवा होनी चाहिए। भगवान को भोग चढ़ना चाहिए, भगवान का श्रृंगार होना चाहिए, फूल माला बननी चाहिए भगवान के लिए। तो ऐसी सेवा करने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है, और समय निकालकर मंदिर में आकर भक्तों के बीच में बैठ के ऐसे कथा में, कीर्तन में, दर्शन में, सेवा में शामिल होना, ये बहुत लाभदायक है हमारी भक्ति में, भक्ति के लिए। तो फिर ब्राह्मण की पत्नियां वापस चली गईं, और जब ब्राह्मणों ने देखा कि अरे, अपने पत्नियों के लिए ऐसे शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो गया और हम तो पीछे रह गए, ये तो स्वयं परब्रह्म भगवान है और हम ये श्री कृष्ण बलराम को पहचान नहीं पाए, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। तो वो अपने आप को धिक्कारने लगे, हमारे ऊंचे जन्म का धिक्कार हो, हमारे ऊंचे कुल का धिक्कार हो, हमारे ये जो कर्मकांड के कार्यों कार्य करने की जो दक्षता है उसको धिक्कार हो, हमारे ऊंचे मंत्रों के ज्ञान को धिक्कार हो, हमारे विद्वत्ता को धिक्कार हो, क्या लाभ है? जबकि हम स्वयं भगवान को पहचान नहीं पाए, जब उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया, सेवा का अवसर प्राप्त करने पर भी हमने सेवा नहीं की भगवान की, बल्कि हमारी पत्नियां हैं उनको वेदों के मंत्र नहीं मालूम, कर्मकांड के विभिन्न यज्ञ संपन्न कैसे करना है ये भी नहीं उनको मालूम, उन्होंने कोई व्रत तप आदि नहीं किए हैं, फिर भी उनको जीवन की सफलता प्राप्त हो गई और हमें नहीं हुई। ऐसे पछतावा तो हुआ उन ब्राह्मणों को, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण कृष्ण बलराम के पास गए नहीं। कुछ भावना जागृत हुई, अनुकूल भावना कृष्ण के प्रति, परंतु कंस के डर से वो आगे नहीं चले गए, वहीं पर रहे। तो कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों की इच्छा पूरी करने के बाद वहीं उस स्थान में रहे। और अब सुखदेव गोस्वामी इस श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 24वें अध्याय में अब गोवर्धन पूजा की चर्चा करने वाले हैं, और इस अध्याय के साथ वो उस सुंदर लीला और बहुत ही प्रसिद्ध लीला का वर्णन करने वाले हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के मान का भंग किया। यहां सुखदेव गोस्वामी इस 24वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री शुक उवाच, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान। भगवान मतलब श्री कृष्ण अपि तत्र एव, तत्र मतलब उसी स्थान में, एव निश्चित ही। तो भगवान श्री कृष्ण बलदेवेन संयुतः, तो बलदेव के साथ में थे और ग्वाल बाल भी थे, उसी स्थान में रहे जिस स्थान से उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर कृपा की थी, उसी गांव में। वास्तव में उस गांव का नाम है भातरों, भात, भात आप जानते हैं, मराठी में भी भात कहते हैं चावल के लिए। तो वहां भात, जहां पे यज्ञ पत्नियों ने भोजन खिलाया था श्री कृष्ण और बलराम को, तो वो स्थान मथुरा और वृंदावन के बीच में है, तो उसी स्थान के आसपास हुए होंगे श्री कृष्ण, इसीलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी तत्र एव कहते हैं। तत्र एव उसी स्थान में थे और निवसन उसी स्थान में रह रहे थे। तो उन्होंने देखा, अपश्यन किनको देखा, गोपान जो गोपगण थे उनको देखा। वो गोपगण क्या कर रहे थे, इंद्रयाग कृत उद्यमान, इंद्र के लिए एक यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे और इसके लिए उद्यमान बहुत ही ज्यादा परिश्रम हो रहा था। यह उद्यम बाग है ना, बहुत परिश्रम होता है उद्यम। तो यहां भी नंद गोप और अन्य जो गोप हैं वो सब बड़ा परिश्रम कर रहे थे, एक विशाल कुछ कार्य करने जा रहे थे, इंद्रयाग कृत। तो फिर श्री कृष्ण देखा कि सब क्या हो रहा है, तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तत् अभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सवदर्शनः प्रश्नयावनतो पृच्छद् वृद्धानंद पुरोगमान। तत् अभिज्ञो, भगवान अभिज्ञ है, अभिज्ञ मतलब जिनको सब कुछ मालूम है, जिनका ज्ञान संपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में भी शुरुआत में ही प्रथम श्लोक में ही व्यास देव जी कहते हैं, जन्माद्यस्यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञः स्वराट। भगवान की परिभाषा करते हुए वो कहते हैं कि भगवान ज्ञान से पूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस वाक्य से सब जब श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करते हैं व्यास देव, तुरंत वो फिर कहते हैं कि ये वासुदेव भगवान है। ये भगवान क्यों है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम नमन कर रहे हैं उस भगवान को, भगवते जिनका नाम है वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम इस वासुदेव को भगवान क्यों कह रहे हैं, जन्म आदि अस्य यतः, जन्म आदि, आदि मतलब न केवल इस सृष्टि का जन्म या उत्पत्ति भगवान से होती है, परंतु भगवान इस सृष्टि का पालन करने वाले भी हैं और इसका संहार करने वाले भी हैं। तो तीनों चीजें परम सत्य भगवान से आती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये परम सत्य की प्रथम परिभाषा है। अगर आपसे कोई कहे कि भगवान शब्द क्या है, ये कौन है ये परम सत्य, हाँ कृष्ण तो हैं, परंतु किस वजह से उनको हम कहते हैं, भगवान वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और न केवल उत्पन्न होता है, उनसे पालित होता है, उनसे संहार भी होता है। और फिर आगे व्यासदेव जी कहते हैं, जन्मादि अस्यतः अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः, जो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों तरीकों से वो पूर्ण ज्ञान से संपन्न है, अभिज्ञ जो सब कुछ जानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा ज्ञान न प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण है न अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हमारे शरीर में भी क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ हो रहा है शरीर में, पता ही नहीं चलता है क्या है, कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब सा लग रहा है। हमें दर्द भी होता उस समय भी हमें पता नहीं चलता कि ठीक कहाँ दर्द, क्या दर्द हो रहा है, कैसे हमारा भोजन का पचन हो रहा है, कैसे सब क्रियाएं चल रही हैं शरीर में, अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसका भी पूरा ज्ञान हमें नहीं है। तो दूसरों के शरीर में, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरे जगहों में, दूसरे अन्य समयों में क्या चल रहा है, हमें कैसे पता। लेकिन भगवान का ज्ञान संपूर्ण है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। कि हे अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं वेद अहम मतलब मैं जानता हूं, समतीतानि जो व्यतीत हो चुका है, जो बीत चुका है उसे मैं जानता हूं, वेदाहम समतीतानि, वर्तमानानि जो वर्तमान में चल रहा है वो भी मैं जानता हूं, भविष्याणि च भूतानि भविष्य में जो होने वाला है मैं जानता हूं, भूतानि सारे प्राणियों को मैं जानता हूं, माम तु वेद न कश्चन लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूं, सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, मुझ भगवान को। तो ये श्री कृष्ण अभी 7 वर्ष के हैं, इस गोवर्धन लीला के समय श्री कृष्ण की आयु पृथ्वी के या भौतिक जगत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 वर्ष है। लेकिन फिर भी भगवान की भगवत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान भले 1 महीने के हों, 7 वर्ष के हों या 20 वर्ष के हों, उनकी अभिज्ञता में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तद अभिज्ञ अपि भगवान। हालांकि ये भगवान श्री कृष्ण जो बाल लीला पौगंड अवस्था में पहुंचे हैं, ये बाल लीला कर रहे हैं, हालांकि वो अभिज्ञ हैं और हालांकि वो सर्वात्मा हैं। सर्वात्मा मतलब सबके हृदय में परमात्मा, भगवान हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। सर्वदर्शनः, वो सब जगह उपस्थित हैं, सब जगह देखे जा सकते हैं, सब जगहों को देख सकते हैं। तो हालांकि भगवान अभिज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वदर्शन हैं, फिर भी अपि वो क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, प्रश्रय अवनतः, बहुत ही नम्रता से झुक रहे हैं नंद महाराज के सामने, पृच्छत अपृच्छत पूछ रहे हैं। किन से पूछ रहे हैं, वृद्धान नंद पुरोगमान, नंद पुरोगमान मतलब वहां गोकुल में जितने भी वृद्ध गोपगण थे, जिनके नेता नंद महाराज से थे, उनके सामने आकर बड़े नम्रता पूर्वक झुक कर श्री कृष्ण अब अपृच्छत पूछने लगे। उनको बड़ी उत्सुकता थी श्री कृष्ण को, हालांकि वो सब जानते थे, फिर भी वो दिखा रहे थे कि वो बहुत इच्छुक हैं जानने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण अपने गोवर्धन लीला को करने के लिए बहुत उत्सुक थे, आतुर थे, इंद्र के मान का भंग करने के लिए, इंद्र को फिर से सही भक्ति मार्ग में स्थित करने के लिए श्री कृष्ण आतुर थे। तो जल्दी जल्दी श्री कृष्ण करना चाहते थे, तो देख रहे थे कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, उधर हम गोवर्धन की पूजा करना चाहते हैं और ये सब यहाँ इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण क्या कहने लगे, कथेताम मे पितः कह अयम संभ्रमो व उपागतः, किम फलम कस्य वोद्देशः, केन वा साध्यते मखः। कथयताम मे पितः, कथयताम मे, ये मुझसे कहा जाए पिता, हे पिताजी मुझसे ये बताया जाए या कहा जाए, कह अयम, ये क्या हो रहा है सब, ये सब क्या है। संभ्रमो व उपागतः, ये सारे इतना भाग दौड़ संभ्रम, ये सब क्या हो रहा है, इतने लोग भाग रहे हैं, ये सब सामग्री इधर से उधर ले जा रहे हैं, इतना सामान उधर से इधर ले आया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इतना उद्यम, इतने सारे कार्य क्या हो रहे हैं यहां पर। किम फलम, इतना विशाल यज्ञ हम करने जाए हैं तो इसका फल क्या होगा, क्या प्राप्त होगा हमें, कस्य वा उद्देश्यः। तो इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? हर कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए ना, बिना उद्देश्य के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहां जो इतना उद्यम हो रहा है, इतना सब संभ्रम हो रहा है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? केन वा साध्यते मखः। तो इस मखः या इस यज्ञ से क्या हासिल होने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है? एतद् ब्रूहि। तो कृपया बोलिए हे नंद महाराज, हे बाबा, हे पिताजी, एतद् ब्रूहि, मुझसे कहिए। महान कामः, मुझे जानने की बहुत कामना है, बहुत इच्छा है। कभी कभी घर में जब कोई कार्य चलते रहते हैं तो बच्चे आते हैं, माता पिता से पूछते हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ये स्वाभाविक है बच्चे के लिए। प्रभुपाद जी एक बार कहा करते थे, ये जिज्ञासा करने की जो प्रवृत्ति है, ये बुद्धि का लक्षण है, जो कि मनुष्य जीवन में अधिकतर होता है। वो कहा करते थे कि एक बार उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा था, उसने देखा कि कोई आदमी ढोलक बजा रहा है। तो ढोलक बजा रहा है तो इसका मतलब आवाज आ रहा है अंदर से, तो अंदर कोई आदमी होगा। ये बच्चा सोच रहा था कि आदमी होगा, उसने अपना न्याय बुद्धि बुद्धि चलाई कि यहां से आवाज आ रहा है तो कोई आदमी होगा। तो उसने कुछ धार वाली वस्तु ली और उस ढोलक के चमड़े को काट दिया देखने के लिए अंदर क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो बुद्धि, ये जिज्ञासा, यहां कुछ आवाज आ रहा है तो कोई आदमी तो होगा, कहां से आ रही है, कौन है अंदर बैठा है ढोलक के भीतर, उसने काट दिया। तो ये जिज्ञासा है सबके अंदर, मनुष्य जीवन में बुद्धि तो है, जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति तो है, परंतु अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये नहीं होता है। ब्रह्म की ओर, भगवान की ओर ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति केंद्रित करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं, पौगंड लीला। तो अभी जैसे बच्चों के साथ होता है वैसे वो कहते हैं, एतद् ब्रूहि महान कामो। तो हे पिताजी, जल्दी से कहिए ये सब क्या हो रहा है। महान काम, मुझे जानने की बहुत तीव्र इच्छा है। मह्यम सुश्रूषवे पिता है, और मैं बड़े श्रद्धापूर्वक सुनूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं श्रद्धापूर्वक सुन लूंगा। नहि गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम इह। जो साधु होते हैं, नहि गोप्यम, वो किसी चीज को गोपनीय नहीं रखते हैं, वो खुले बता देते हैं सबको। जो साधु नहीं होते उनके पास बहुत सारे गोपनीय चीज होते हैं, मेरे पास ये है ये है, वो किसी को नहीं बताएंगे, ये मेरे पास ये कोई बहुत गोपनीय चीज है। लेकिन वो कहते हैं कि हे पिताजी, जो साधु लोग होते हैं उनके पास क्या कोई प्राइवेट बात क्या है उनकी। साधुओं का जीवन प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक होता है, सबके लिए होता है, सभी लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका जीवन जैसे कहते हैं खुला पुस्तक रहता है। तो साधुओं के लिए कोई बात गोपनीय नहीं होनी चाहिए। नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम इह। और साधु जो होते हैं वो अन्यों को अपने समान समझते हैं, ये साधु के विशेष गुण होते हैं। मतलब वो भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, सबको अपना प्रेम देते हैं, सबको समान समझते हैं, सबको अपने समान समझते हैं। केवल सबको समान समझना ये दूसरी एक बात है, लेकिन सबको अपने समान समझना ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि हम लोग अपने आप को विशेष समझते हैं, अन्यों को अलग समझते हैं। पहले अपना देखभाल करो और फिर अन्यों का। लेकिन जो साधु होते हैं उनकी उनका भाव ऐसे नहीं होता। चाणक्य पंडित भी कहते हैं ना कि पंडित जो सच्चे साधु जो ज्ञानी होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, मातृवत परदारेषु, अन्यों के पत्नियों को माता के समान समझना, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत कि अन्यों के धन को सड़क में पड़े हुए पत्थर के समान समझना, भले वो सोना चांदी रत्न क्यों ना हो, अन्यों का है ना मेरा नहीं है तो उसे पत्थर समझना जिसका कोई मूल्य नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और जितने भी प्राणी हैं उन सबको अपने समान समझना, आत्मवत, हमारे जैसा ही अन्य प्राणी है। तो कृष्ण भगवान वैदिक सभ्यता के अलग अलग चीजों को यहां बता रहे हैं, बड़े बुद्धिमानी से वो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि नंद महाराज हिचकिचाए नहीं। कहीं नंद महाराज के मन में ऐसे विचार न आ जाए कि अरे ये तो बच्चा है, 7 साल का है, ये क्या समझेगा, ये सब यज्ञ का है, इंद्र कौन है, क्या है, ये बड़ा होकर समझेगा। तो कृष्ण भगवान को ऐसे संशय था, इसलिए वो इस प्रकार के तर्क कर रहे हैं। नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम यह अस्ति अस्वपर दृष्टि नाम। अस्वपर दृष्टि नाम, अस्वपर दृष्टि, मेरा और तुम्हारा, मेरा और अन्यों का। तो जो साधु होते हैं वो ऐसे भेद नहीं करते हैं कि ये मेरा है और वो उसका है, उनकी दृष्टि उदार रहती है। उदार चरिता नाम तो वही वसुधैव कुटुंबकम, कि वसुधा एव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी एक कुटुंब है, ये मेरा और वो तुम्हारा, ये बुद्धि नहीं रखते हैं। साथ साथ अमित्र अमित अमित्र उदास्त विद्विषाम, तो जो मित्र हैं, जो उदासीन हैं, जो शत्रु हैं, उनमें भी भेदभाव नहीं करते, सबको समान दृष्टि से रखते हैं। उदासीनोरिवत वर्ज्य आत्मवत सुहृत उच्यते, जो व्यक्ति उदासीन है भले उसे हम शत्रु की तरह समझकर उनसे बात भी न करें वो एक बात है, लेकिन जो मित्र है वो तो आत्मसमा होता है, अपने जैसे ही उसको समझना चाहिए। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि नंद महाराज शांत खड़े थे जब श्री कृष्ण ऐसे कह रहे थे, क्योंकि उनके मन में एक संशय था कि ये तो बच्चा है, ये क्या समझेगा। फिर भी साथ साथ उनको याद आया कि गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार के समय कहा था कि गुणे नारायण समह, कि इस बच्चे के गुण भगवान नारायण के समान होंगे, ये नारायण तुल्य है, ये आपका पुत्र। तो इसीलिए नंद महाराज अभी द्वंद्व में पड़ गए, ये तो छोटा बच्चा है क्या समझेगा, लेकिन फिर भी गर्ग मुनि ने ऐसे कहा था तो कृष्ण से कैसे बात करना चाहिए, किस तरह के उत्तर देने चाहिए, सही उत्तर सही बराबर से उसको समझाना चाहिए या तो कहना चाहिए कि अरे तुम बच्चे हो तुम क्या जानोगे, बैठ जाओ, क्या बोलना चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसे अपने उम्र से ज्यादा भी बात करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ों की तरह बात करने लग जाते हैं कभी कभी बच्चे, जो ज्यादा तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो कभी कभी इस प्रकार से बात करते हैं। तो भगवान तो सबसे बुद्धिमान है, तो इसलिए वो जब बात कर रहे हैं तो नंद महाराज को थोड़ा संशय हुआ कि ये तो इतनी बुद्धिमानी से बात करता है, सारी सभ्यता वैदिक सभ्यता को ये जानता है बच्चा, तो शायद उत्तर देना आवश्यक होगा, देखते हैं। कृष्ण ने बात समाप्त नहीं की, तो कृष्ण कहने लगे ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। देखा जाता है कर्माणि जन अयम अनुतिष्ठति, जब जन इस दुनिया में लोग कर्माणि अनुतिष्ठति, जब कोई कर्म करते हैं तो उनमें से कोई होते हैं ज्ञातवा, वो समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, और कोई होते हैं अज्ञातवा, बिना समझे हुए वो कर्म कर देते हैं। तो जो लोग विदुष कर्म सिद्धि स्याद, लेकिन जो विदुष होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो जानते हैं कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, उनको कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यथा न अविदुषो भवेत, लेकिन जो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, जो जानते नहीं है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब क्या है, बस करे जा रहे हैं कर्म, तो उनको सिद्धि कैसे मिल सकती है। तो ये कर्म योग कर्मसु कौशलम, गीता में भगवान कहते हैं ये कर्म ये एक कला है, एक विज्ञान है, कैसे कर्म हमें करने हैं ये सब सीखना चाहिए। ये एक गलत धारणा प्रचलित है सारे समाज में भगवत गीता के बारे में कि गीता का सार है कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। ये गीता में भगवान ने नहीं कहा है, भगवान ने कहा है मुझ मेरे लिए कर्म करते रहो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघः समाचरः। जब तुम मेरे लिए कर्म करोगे हे अर्जुन, ये यज्ञ कहलाता है, और इस यज्ञ से तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। परंतु अगर मेरे लिए कर्म न करके स्वार्थ के लिए तुम कर्म करोगे तो ये तुम्हें कर्म बंधन में अटका देगा। वही कर्म, बाहरी दृष्टि से दोनों प्रकार के कर्म एक समान लगते थे, अर्जुन के और दुर्योधन के, लेकिन दुर्योधन के कर्म ने दुर्योधन को बांध दिया इस भौतिक दुनिया में, अर्जुन के कर्म ने अर्जुन को मुक्त कर दिया इस भव बंधन से, क्योंकि अर्जुन के कर्म भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हो रहे थे। अर्जुन ने अपने कर्मों को, अपने सारे चित्त को, अपने सर्वस्व को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था। तो ये कर्म क्या चीज है, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, किनको ये कर्मों का फल समर्पित करना चाहिए, किनको प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। बस केवल यही कर्म करते रहना, कर्म ही सब कुछ है। आगे चल के इस बात को भी कृष्ण भगवान कहेंगे, बस कर्म करते रहो, हम कर्मयोगी हैं, नहीं। हाँ, कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार आपको है, परंतु मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल का अधिकार तुम्हें नहीं है अर्जुन। इसलिए यहां पर श्री कृष्ण इस महत्वपूर्ण बात को करते हैं कि कभी कभी जब कोई हम क्रियाएं करते हैं, विशेष करके धर्म के क्षेत्र में, तो हमें मालूम होना चाहिए, ज्ञात्वा फिर हमें कर्माणि अनुतिष्ठन्ति, फिर हम कर्म कर सकते हैं। कि अनुष्ठान हो रहा है हमारे घर में, हमने ब्राह्मणों को बुलाया है, कोई स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, हम पूजा कर रहे हैं भगवान का, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या विज्ञान है। आजकल हम देखते हैं कि धर्म की ग्लानि इसलिए हुई है कि अंधश्रद्धा बहुत बढ़ गई है, या तो फिर संशय हो गया है लोगों के मन में। क्यों? क्योंकि धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, शिक्षण नहीं हो रहा है, लोगों को ज्ञान नहीं मिल रहा है कि सही धर्म क्या है। इसलिए सबने अपने अलग अलग भगवान बना लिए हैं, सबने अपने अपने अलग अलग धर्म की पद्धतियां बना ली हैं। कोई कहता धर्म ऐसा है, कोई कहता धर्म वैसा है, कोई कहता ये मेरा भगवान है, वो तुम्हारा भगवान है। तो सब गलत ऐसी भ्रांतियां चल रही हैं समाज में, और अंधश्रद्धा तब होगी, तब ज्यादा समय यह धर्म टिकेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये कि इन किताबों को पढ़ो, रोज पढ़ो, ताकि हमें ज्ञान मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र तावत् क्रिया योगो भवताम किम विचारितः। इसलिए ये बताइए कि क्या आप ये जो कार्य क्रिया योग, ये जो कार्य आप करने जा रहे हैं, किम विचारित है, क्या ये शास्त्रों पर आधारित है? देखिए भगवान बाल कृष्ण बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, ये जो आप कार्य कर रहे हैं शास्त्रों पर आधारित है कि नहीं है, अथवा लौकिकस्तन में पृच्छतः साधु भण्यतम भण्यताम। या अगर शास्त्रों पर आधारित नहीं है तो क्या यह केवल एक लौकिक परंपरा से चल रहा है कि किसी ने कुछ आरंभ किया है, कोई प्रथा आरंभ कर ली जो शास्त्रों पर आधारित नहीं है, वो चलते आया, वो प्रथा चलती आई और हम उसी उसको करते जा रहे हैं। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी वो कहानी कहा बताया करते थे ना, हम भी बता चुके हैं कई बार, कि एक घर में एक बार एक विवाह हुआ और उसमें जब यज्ञ हो गया, शुरू हो गया था, तो वहाँ एक बिल्ली आ गई और वर के माता ने देखा कि बिल्ली आ गई, बहुत बड़ा बर्तन जो है बिल्ली के ऊपर डाल दिया क्योंकि बिल्ली बहुत वहां उत्पात कर रही थी। तो बच्चों ने देखा कि एक बिल्ली वहां बंद करके रखी बर्तन के अंदर। तो समय बीत गया, वर और वधु दोनों के बच्चे हो गए, वर वधु दोनों बूढ़े हो गए, बच्चों के विवाह का समय आ गया। और जब बच्चों का विवाह हो रहा था तो फिर दोनों को याद आया, अरे हाँ, हमारा विवाह जब हुआ था तो वहाँ बिल्ली को पकड़ा गया था, बिल्ली को पकड़ के उसके ऊपर बर्तन डाला गया था। तो ये भी एक रिवाज होगी ऐसे हमारे हमारे कुल में। तो उन्होंने ऐसे किया, बिल्ली को पकड़ा, उसके ऊपर बर्तन डाल दिया, विवाह समाप्त हो गया, बिल्ली को छोड़ दिया। उसके बाद अनेक पीढ़ियों तक ये प्रथा चलती गई। वो भी यज्ञ के साथ साथ जब ब्राह्मण को बुलाते थे तो बिल्ली को भी लेकर आते थे और ऐसे करते थे। तो यह लौकिक परंपरा, किसको क्या मालूम किसने शुरू किया, कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, बस हमारे परंपरा में आ रहा है तो कर लो। कोई बुजुर्ग है तो ज्ञानी है आवश्यक नहीं है, विशेष करके धर्म के बारे में। अगर उस व्यक्ति ने सही प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है भगवान के बारे में, तब वो हमें सही परंपरा को शुरू कर सकता है। अन्यथा कोई भी परंपरा परिवार में चले तो इसका कोई मतलब नहीं है। हर एक परिवार में आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसी परंपरा है जो काफी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन इनमें से कितनी प्रथाएं हैं जो कि शास्त्रों पर आधारित है। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं, किम विचारितः अथवा लौकिकस तन्मे पृच्छतः साधु भण्यताम, कि ये कृपया मुझे समझाइए कि किस आधार पे आप ये कार्य करने जा रहे हैं। फिर नंद महाराज उत्तर देते हैं। नंद महाराज का उत्तर यह है, तो श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री नंद उवाच, पर्जन्यो भगवानिन्द्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। श्रीनन्द उवाच, पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बोलिएगा। श्रीनन्द उवाच, पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। श्रीभगवन् उवाच, पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। माताजी, पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः वर्षन्ति भूतानां जीवनं पयः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महान भगवान इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं, जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो। पर्जन्य या वर्षा ये इंद्र से आती है। इंद्र वर्षा के नियंत्रक होते हैं। और ये वर्षा कहां से आते हैं? बादल से। तो मेघास तस्यात्म मूर्तयः, तो ये बादल इंद्र के आत्ममूर्तयः, अपने ही रूप हैं। ये बादल भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो इंद्र की ओर से, इंद्र से शक्ति प्राप्त करके वो ते अभिवर्षन्ति भूतानां, सारे प्राणियों के ऊपर वर्षा करते हैं सारे प्रांतों में, जिससे कि भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः, जिससे कि सारे प्राणियों का पोषण हो सके, उनका प्राण जो है वो बनाए रख सके। तो ऐसे ये इंद्रदेव की पूजा हम कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रदेव से सब कुछ मिलता है। और ये सही है कि बिना वर्षा के कुछ नहीं हो सकता। अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, कि जब तक अन्न नहीं होगा हम जी नहीं सकते। लेकिन अन्न पर्जन्य के ऊपर निर्भर है, या वर्षा के ऊपर। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, और यज्ञ और जो वर्षा है वो यज्ञ के ऊपर निर्भर है, और यज्ञ हमारे निहित कार्यों के ऊपर निर्भर है। तो वर्षा का मौसम अभी चल रहा है। वर्षा ऋतु एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, सब जगह हरियाली हरियाली दिखती है, मन को बहुत आनंद प्रदान करने वाला एक मौसम है। साथ साथ में इसमें थोड़े असुविधाएं भी हैं, बाहर जाते हैं भीग जाते हैं, कभी कभी रास्ते में कीचड़ हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कपड़े सूखते नहीं हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता तो अनाज नहीं मिलता, हम जी नहीं सकते। तो हमारे लिए वर्षा कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल ये पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। ऐसे लोग कहते हैं कि आने वाले जो विश्व युद्ध होंगे और छोटे छोटे युद्ध भी होंगे वो पानी के ऊपर होंगे, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा है ना, तो वर्षा ठीक से नहीं आ रहा है। वर्षा अगर होता है तो ज्यादा होता है, अधिक होता है। दो तीन दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सत्ययुग में वर्षा होती थी केवल रात को, और ज्यादा नहीं कम नहीं, जितना आवश्यक है उतनी ही वर्षा होती थी। वर्षा कम होने से अकाल पड़ जाता है, वर्षा अधिक होने से बाढ़ हो जाता है। दोनों अवस्थाओं में अन्नात भवन्ति, वो अन्न जो है वो नहीं हो पाता। समय से पहले वर्षा आती है तो फसल नष्ट हो जाते हैं, जैसे यहां हुआ। समय पे बारिश नहीं आती है, देरी से आती है, तो भी फसल में नुकसान हो जाता है। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है सृष्टि में कि अगर सभी लोग यज्ञ करेंगे तो सब ठीक ठाक हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यज्ञ करने से सब कुछ मिल जाता है। जब मनुष्य जीवन में हम अपने कर नहीं देते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो भगवान गड़बड़ी कर देते हैं। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए ये देवतागण इस सृष्टि को संभाल रहे हैं, परंतु मूल कर्ता भगवान है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रताप प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्विष्ट कामधुक। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने जब सृष्टि की रचना की और सारे प्राणियों को यहाँ पे भेज दिया तो मैंने यज्ञ भी साथ में भेज दिया कि यज्ञ करो। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, तो इससे तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को तुम प्राप्त कर पाओगे। देवान भावयतानेन तु देवान भावयन्तु वः, परस्परम आपस में देव और आपके बीच में संबंध होना चाहिए। आप देवताओं को प्रसन्न करो यज्ञ करने से करके, और देवता आपको प्रसन्न करेंगे आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करके। परंतु मूल जो भोक्ता है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जब कार्य किए जाते हैं तो सब ठीक ठाक हो जाता है। जितनी हमें हमारी आवश्यकता है वो सब पूर्ण हो जाती है। और क्योंकि आधुनिक काल में ऐसे यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, विशेष करके नाम संकीर्तन जो कि कलयुग का युग धर्म है, इसलिए इतनी गड़बड़ी और असंतुलित अवस्था निर्माण होती जा रही है। सब जगह पानी का भी प्रदूषण हो रहा है, पानी कम होते जा रहा है। वृंदावन में हम देखते हैं समस्या ये है, पहले पानी को निकालने के लिए जमीन में 20 फुट 30 फुट जाना पड़ता था, अब 80 फुट 100 फुट 150 फुट 200 फुट तक जाना पड़ता है जमीन के अंदर, और वो भी पानी जो निकल रहा है वो खारा पानी निकल रहा है, नमकीन, पीने के लिए मुश्किल। और ये सब जगह ऐसे हो रहा है, नदियों में पानी कम होते जा रहा है। पानी तो पृथ्वी लोक के ऊपर बहुत है लेकिन समुद्र में, और समुद्र का पानी खारा है, पिया नहीं जा सकता। हम जब 3-4 साल पहले अरब देश में गए थे तो वहां वो बता रहे थे, हम पूछ रहे थे कि आप लोगों को पानी कैसे मिलता है पीने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ तो नदियां नहीं है, ना कोई सरोवर है, ना तालाब है, तो पीने का पानी आता कहाँ से है? तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो कि समुद्र का पानी लेती हैं और उससे नमक निकालती हैं। नमक निकाल के जो फिर वो शुद्ध पानी रहता है वो पिलाते हैं सबको। तो बहुत महंगा है ये, बड़े बड़े कारखाने स्थापित करने पड़ते हैं। परंतु जब हमने ज्यादा इसके बारे में सोचा, लोगों से पूछताछ किया, फिर पता चला कि कितना नुकसान इससे होता है। क्योंकि जो आपने अच्छा पानी तो निकाल लिया, नमक तो निकाल लिया, लेकिन ये नमक से भरा हुआ पानी फिर आगे जाके इतना प्रदूषण पैदा कर रहा है वहां पे सारे समुद्र के तट पर कि इससे बहुत नुकसान हो जा रहा है, आज उनको समझ में आ रहा है। तो ऐसे जगह जगह पानी की तंगी, पानी की समस्या, लोग यज्ञ नहीं करते हैं। इसलिए केवल अगर हम हरिनाम संकीर्तन सब जगह करें, कल्पना कीजिए हर एक घर में अगर भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज प्रकृति में प्राप्त नहीं होगी। जैसे वर्षा अधिक नहीं होगी, जितना चाहिए उतना होगा। तो यहां जब नंद महाराज कह रहे हैं कि पर्जन्य भगवान इंद्रो, तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इंद्र के पीछे भी कोई एक व्यक्ति है जो इस सबको संभाल रहे हैं, उनके पुत्र हैं वो, लेकिन अपने पुत्र को पहचान नहीं पा रहे हैं, वो केवल इंद्र को जानते हैं। और इसलिए कह रहे हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः। तो इंद्र स्वतंत्र नहीं है, इंद्र अपने आप को स्वतंत्र सोच रहे हैं, और इसलिए कृष्ण ये लीला की, क्योंकि इंद्र की भ्रांति हो गई थी कि मैं स्वतंत्र हूं। अपने ऐश्वर्य से वो प्रभावित हो गए थे, वो भ्रम में आ गए थे। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से इंद्र को सही रास्ते में ले आते हैं। तम तात वयम अन्ये च वारमूचां पतिमीश्वरं द्रव्यैस्तद्रीतसा सिद्धैर् यजन्ते कृतभिर्नराः। इसलिए हे तात, तात मतलब जब किसी प्रिय व्यक्ति को कहा जाता है तो तात कहते हैं। वत्स, जैसे कभी कभी बच्चों को वत्स, वत्स एक बछड़ा होता है गाय का, तो बच्चे को कभी कभी प्रेम से माता पिता वत्स कहते हैं, तो उसी प्रकार से तात। तो हे पुत्र, केवल हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करने जा रहे हैं, सभी लोग करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं, ये काफी बात प्रचलित है सारे समाज में। और हम क्या करते हैं, द्रव्यैस्तद्रीतसा सिद्धैर् यजन्ते कृतभिर्नराः। तो हम तरह तरह के द्रव्य जो है, अनाज आदि इंद्रदेव को अर्पण करते हैं, जिससे कि वो इस अन्न का परिवर्तन वर्षा के रूप में करके हम बरसाते हैं, जिससे कि फिर हमारे यहाँ घास उत्पन्न होता है, फिर हमारे गाय चरते हैं, वो गाय खाते हैं, हमें भरपूर दूध दही आदि मिलता है, हम धनवान हो जाते हैं। ये सब इंद्र की कृपा से हो रहा है, इसलिए हम इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तत्शेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे। तो इस प्रकार से जो इंद्र के प्रति यज्ञ किए जा रहे हैं, उसके अवशिष्ट से, शेषेण इंद्रदेव के प्रसाद से उपजीवन्ति, हम हमारे जीवन को बनाए रख पा रहे हैं। और त्रिवर्ग फल हेतवे, धर्म अर्थ काम, ये तीनों उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं। पुरुषम पुरुष कारणम पर्जन्य फल भावना है। और इंद्र ही वो व्यक्ति हैं जो पुरुष कारणाम, जो उद्यमी लोग होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, उनके कर्म के फल को प्रदान करने वाले इंद्र होते हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। तो इसे ये पथ को कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड में व्यक्ति सोचता है कि ये जो देवता हैं, ये हमारे सारे आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, तो यही सर्वस्व है। परंतु इनके ऊपर भी, इनके पीछे भगवान श्री कृष्ण है, जो इनको ये सारे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनको जो वरदान देने की क्षमता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण से आ रही है। तो आगे नंद महाराज कहते हैं, य एनम विसृजे धर्मम परम्पर्य आगतम नरः, कामा द्वेषाद भयाद लोभात सवै नाप्नोति शोभनम। तो देखो, ये जो यज्ञ हम संपन्न करने जा रहे हैं, परम्पर्य आगतम, ये परंपरा से चलते आ रहा है, ये मैंने शुरू नहीं किया है। और इसलिए काम से, द्वेष से, भय से, लोभ से इसको बंद नहीं करना चाहिए। जो परंपरागत चलते आ रही प्रथाएं हैं, अनुष्ठान हैं, क्रियाएं हैं, उनको केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की वजह से बंद नहीं करना चाहिए, उनको जारी रखना चाहिए। नंद महाराज इस प्रकार से श्री कृष्ण को बता रहे हैं। और अगर ऐसे परंपरागत अनुष्ठानों को रोका जाता है लोभ आदि के कारण, तो इससे कोई शुभ परिणाम नहीं हो सकता। तो श्री शुक उवाच, वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजौकसां इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। तो वचः निशम्य नंदस्य, तो कृष्ण ने नंद के वचनों को सुना, निशम्य, तथा अन्येषां व्रजौकसां, और नंद महाराज के साथ अन्यों ने भी ऐसे कुछ कहा होगा। सारे वृद्ध गोपों ने भी नंद महाराज की बात में हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ बेटा, जो नंद बाबा कह रहे हैं वो सही है, ऐसे हमारी पुरानी परंपरा है, अनेक पीढ़ियों से ये सब चलते आ रहा है, इसलिए तुम मान जाओ। इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशवः। और फिर केशव यानी श्री कृष्ण पितरम प्राह अपने पिता नंद महाराज से कहने लगे, कुछ कहने, क्या कहने गए वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन किस वजह से कहने लगे, इंद्राय मन्युम जनयन, मन्यु मतलब क्रोध। तो अब जो श्री कृष्ण बोलने वाले हैं उसका उद्देश्य है इंद्र को क्रोधित करना, इंद्र को भड़काना। क्योंकि वो जानते थे कि इंद्र की गलत धारणा है, इंद्र अपने ऐश्वर्य के मारे थोड़ा उन्मत्त हो गया है, मुझ भगवान को भूल चुका है, वो भूल गया है कि ये इंद्र मेरा सेवक है और अभी अपने आप को ही ईश्वर मान रहा है, तो चलो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये ऐश्वर्य या संपत्ति का खतरा है, जब ऐसे आ जाता है तो व्यक्ति के मन में कभी कभी घमंड आ जाता है, ईश्वर भाव आ जाता है, इंद्र भगवान भूल गए हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि चाहे कोई इंद्र हो या इंद्र गोप हो, इंद्र गोप एक छोटा सा कीड़ा होता है, दोनों की शक्ति भगवान श्री कृष्ण से आती है, इसलिए किसी को घमंड करने की आवश्यकता नहीं है कि जिस शक्ति से, जिस बल और बुद्धि से उसे कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो पद हो, ऐश्वर्य हो या प्रसिद्धि हो, वो सब श्री कृष्ण ने ही प्रदान किया है। ये कृष्ण की कृपा के लक्षण है। कृष्ण की कृपा के लक्षण को अगर हम अपनी योग्यता समझें तो ये गलत बात है। तो इंद्र इतने ऊंचे पद के व्यक्ति हैं, देवताओं के राजा हैं, ये कोई साधारण कोई पद नहीं है। यहां एक छोटे से देश में एक छोटा सा मंत्री बनने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं और अपने आप को क्या नहीं समझते हैं मंत्री बनने के बाद। वो कहते हैं कि हम प्रजा के सेवक हैं, लेकिन जब आते हैं उनके बर्ताव से नहीं लगता कि वो सेवक है, वो सोचते हैं प्रजा मेरी सेवा के लिए है, इसलिए प्रजा है सब जगह। वृंदावन में हमारे मंदिर में कभी कभी ये लोग आते हैं जगह जगह से और इतना उत्पात कर देते हैं कि वो कहाँ आए वो सोचना पड़ता है, मंदिर में आए कि कहाँ आए हैं, कम से कम मंदिर में तो दास बन के आना चाहिए। मंदिर में जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, ऐसे एक नियम होता है। क्यों होता है नियम? या तो फिर पालकी पे बैठ के मंदिर में नहीं आना चाहिए। क्यों ऐसे नियम होते हैं? क्योंकि जब मंदिर में आते हैं तो एक नम्रता की भावना होनी चाहिए। हम बाहर दुनिया में जो भी हों, हम बड़े बड़े राजा भी क्यों ना हो, लेकिन हम केवल भगवान के दास हैं और मंदिर में आते हैं तो ऐसे नम्रता से झुक के प्रणाम करके हमें भगवान के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए। ये कारण है इसके पीछे। लेकिन ये लोग जब आएंगे तो हाँ ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से उनके 50 लोग साथ में बंदूक लेकर सब आएंगे, फिर हल्ला गुल्ला कर देंगे, चिल्लाएंगे, जो पहरेदार है मंदिर के गेट के, दरवाजा खोलो दरवाजा, घूम घूम घूम, बहुत सारा हल्ला गुल्ला करके चले जाएंगे। तो उनके बोल उनके व्यवहार से ऐसे नहीं लगता कि ये लोग अपने आप को सेवक मान रहे हैं। केवल जब चुनाव होता है, चुनाव के समय वो सेवक बन जाते हैं, बोलते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, आपको सारी चीजें दे देंगे, हम ये वचन देते हैं। पे चुनाव हो जाता है, आ जाता है पद में, तो मैं सेवक हूं ये भूल जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं मैं बहुत विशेष व्यक्ति हूं। तो यहां छोटे से एक मंत्री पद को प्राप्त करने से आदमी का इतना दिमाग खराब हो जाता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि जब व्यक्ति को इंद्र देव का पद मिले, जो कि इतना ऊंचा पद है, भले वो अच्छा भक्त भी क्यों ना हो, कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं ये तो मेरे प्रिय भक्त हैं इंद्र, ये असुर नहीं है, ये तो इंद्र है, लेकिन व्यवहार कैसे कर रहे हैं, उन्मत्त हो गया है अहंकार से, अपने ऐश्वर्य से, अपने पद से, इसलिए मुझे कुछ अब करना चाहिए मेरे प्रिय भक्त के लिए। जैसे माता पिता कभी कभी अपने बच्चे को देखते हैं, ये बहुत ज्यादा शरारती होते जा रहा है, अभी मुझे बच्चे को कुछ दंड देना चाहिए जिससे कि वो आगे चल के खराब ना हो जाए, वो सही रास्ते से चले। माता पिता के मन में बच्चे के प्रति प्रेम ही है, वो हितैषी हैं, शुभ चिंतक है उस बच्चे के, लेकिन जब वो इस प्रकार से योजना बना रहे हैं कि बच्चे को हम ऐसा दंड देंगे, तो कोई वो अहंकार से नहीं वो निर्णय को ले रहे हैं, कोई द्वेष भावना से नहीं ले रहे हैं, हित से, वो अपना हित चाहते हैं उस बच्चे का। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, जब यहां कहा गया इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र को क्रोधित करने के लिए वो कहने जा रहे हैं, तो इसके पीछे द्वेष की भावना नहीं है। भगवान की इच्छा ये थी कि लोग अलग अलग तरह से सीखते हैं, किसी को बस एक बात कह दो वो मान जाता है, दूसरे लोग होते हैं जब तक उनको अनुभव नहीं होता तब तक वो बात को मानते नहीं है। तो समझ गए कि इंद्र अब केवल जाके बोलने से मानने वाले नहीं है, उनको एक ऐसे अनुभव कराना चाहिए, एक ऐसी लीला मुझे करनी चाहिए जिससे कि न केवल मेरे ब्रजवासी गण जो हैं मेरे गुणगान करते रहेंगे, लेकिन आने वाली कितनी पीढ़ियां भी इस लीला की चर्चा करते रहेंगे, साथ साथ मेरे प्रिय भक्त इंद्र उसकी भी होश ठिकाने आ सकते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अभी कुछ बोलने जा रहे हैं और साथ साथ भगवान एक ऐसी लीला प्रारंभ करना चाहते हैं जिससे कि अनंत काल तक हर साल एक आनंदमय उत्सव की शुरुआत हो। अगर भगवान ऐसे सब नहीं करते, अगर इंद्रदेव का मान बढ़ नहीं जाता, तो फिर ऐसे गोवर्धन पूजा जैसे सुंदर उत्सव कैसे होते। तो इंद्र को हमें धन्यवाद देना चाहिए ना कि इंद्र की वजह से देखो कितने सुंदर सुंदर उत्सव हम कर पा रहे हैं। ये भगवान की योजना है, भगवान अपने भक्तों के लिए ये सब करते हैं, अनेक उद्देश्यों को भगवान एक कार्य से संपन्न करते हैं। तो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कौन से दर्शन को उन्होंने सामने रखा, आज दोपहर में हम चर्चा करेंगे। दोपहर में 1 बजे, आज रविवार है, तो दोपहर 1 बजे जब प्रवचन होगा, इसमें भगवान श्री कृष्ण के उत्तर हम सुनेंगे। भगवान किस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं और इसके पीछे कारण क्या है। हरे कृष्ण। तो आपके कोई प्रश्न है? माइक।
पर्जन्य के लिए देवता इंद्र है, उनकी हमको पूजा करना चाहिए, और आजकल कलयुग में अगर बरसात नहीं है, वर्षा नहीं है, तो गधों की शादी, फ्रॉग की शादी, गौसाई की शादी, ऐसा करते हैं, इसका क्या कारण?
मूर्खता, अज्ञान, अज्ञान, घोर अंधकार। दो क्या नहीं करते हैं धर्म के नाम पर, आश्चर्य की बात है। जगह जगह भारत में जाएंगे ना, क्या नहीं होता है, जो आप कल्पना कर सकते हैं कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो सब धर्म के नाम पर होता है, क्योंकि घोर अज्ञान, किसी को मालूम ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या है। सब लोग अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करते जा रहे हैं, उसे धर्म कहते हैं। किसी एक व्यक्ति ने शुरू कर दिया, वही बिल्ली की बात, शुरू हो गया सब जगह।
जब गोवर्धन भी दूसरे के ऊपर अवलंबित है, वो जब उनको चारा देता है या कुछ हरा, तो वो भी बारिश के ऊपर आश्रित है, तो उसकी भी क्यों पूजा करना चाहिए, डायरेक्ट भगवान भी क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि गोवर्धन ही भगवान का रूप है, आगे चल के हम देखेंगे, ये स्वयं भगवान है और भगवान के दास भी हैं, और क्यों भगवान ने ऐसे कहा वो आगे चल के हम देखेंगे। गोवर्धन भगवान है और साथ साथ भगवान के सेवक भी है।
मनुष्य का विश्वास किस पर आधारित होता है?
संघ पर। मनुष्य की श्रद्धा किस पर आधारित होती है? श्रद्धा संघ पर। तीन गुणों का संघ, जो तामसिक वृत्ति के होते हैं, जिनका संघ तमोगुण का संघ होता है, उनकी धर्म की धारणा, उनकी श्रद्धा उस प्रकार से होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, तीन गुणों के अनुसार उपासना होती है, श्रद्धा होती है। तो अगर हम सात्विक लोगों के साथ संग करेंगे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, तो फिर हमारी श्रद्धा भी उस प्रकार से हो जाएगी, भगवान कृष्ण में हो जाएगी। नहीं तो भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करने वालों के पास जाएंगे तो हमारी श्रद्धा उस लाइन में चली जाएगी, उनकी उपासना भी हम शुरू करेंगे, या तो फिर कोई फिल्म के अभिनेता की उपासना करेंगे। उपासना तो सभी को करना है, केवल गुण के संग के आधार पर यह निर्धारित होता है कि हमारी उपासना कहाँ जाएगी। और कोई हाँ, पीछे पीछे हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। माइक चालू करो, माइक चालू करिए। हाँ फिर से प्रश्न बोलिए आपका। ठाकुर प्रभु की जय। हाँ आपका प्रश्न बोलिए। बोला
एक ब्रह्माच्या मन है त्याचे पत्नीने हे केलं म्हणून सांगितलं आणि संतांचं संख्या पाहिजे भक्तांचा म्हटला आणि साधू अशा तीन गुणाचा इतर कोण आहे भक्त असं मला सांगून द्या कोण आहे तुम्ही मला काय त्या तीन प्रश्नाच्या मध्ये गुणामध्ये कोण आहे ह्या मंदिर मध्ये ते तुम्ही ओळखता काय?
इतने सारे भक्त है, सबका संग कीजिए। जैसे जैसे आप संग करेंगे वैसे वैसे भगवान आपके लिए और भी साधन जोड़ते जाएंगे।
आपको कौन समझ में आ रहा है? इधर ऐसा भक्त होगा है तीन गुणों में, आपके मन में कौन दिख रहा है?
आप है ना
आप उसे जाते हैं अच्छी तरह। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इतना ना प्रभु के मुझे जानते हैं।
अच्छी बात है, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। सत्यनारायण प्रभु 24 घंटे कीर्तन करते हैं, हम उनको सुनते हैं दिन भर रात भर कीर्तन करते ही रहे। कभी भी हरिनाम के अलावा उनके मुख से हमने कुछ सुना ही नहीं है। हालांकि वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या आप देखिए, दूसरे कार्य नहीं कर सकते, बस हरे कृष्ण महामंत्र दिन भर, और हम कई सालों से देख रहे हैं। हाँ बोलिए प्रश्न।
अभी जो आपने बताया कि लेक से हमको बारिश आता है, तो अभी टेक्नोलॉजी ऐसा है प्रभु जी कि एरोप्लेन से भी आप कभी भी, अभी जो बारिश का सीजन है तो दिसंबर में भी हम टेक्नोलॉजी जो है दिसंबर या मई में भी बारिश आ सकता है, इसके बारे में क्या बता?
हाँ, और टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, किसकी बारिश, क्या बारिश होती है? पानी, एसिड, एसिड की वर्षा होती है, आयोडीन की वर्षा होती है, पानी की वर्षा नहीं होती। ये सब उग्र कर्म है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना, प्रकृति के व्यवस्था को गड़बड़ कर देना, ये हिरण्यकश्यप की वृत्ति है। हिरण्यकश्यप ने देवलोक में बेरोजगारी फैला दी थी। सारे देवताओं का कार्य अकेले हिरण्यकश्यप करता था। इंद्र की क्या जरूरत है, वर्षा मैं ही दूंगा। ये वायुदेव की आवश्यकता क्या है, पवन मैं ही आऊंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। सारे विभागों को वश में कर लिया था। तो हम लोग अभी भगवान की योजना पर निर्भर नहीं होना चाहते, अपनी योजना स्वयं करना चाहते हैं कि वर्षा हमारे विज्ञान से हम कर देंगे, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञात भवति परजन्यो, केवल यज्ञ से वर्षा होगा, हमारे टेक्नोलॉजी से, हमारे विज्ञान से नहीं होगा। और जब तक यज्ञ नहीं होगा, भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं होगा इस कलयुग में, तब तक संतुलित रूप से प्रकृति नहीं चलेगी। इसलिए अभी ये सब चल रहा है ना, वातावरण, ये पर्यावरण की इतनी समस्या आजकल चल रही है, ये सबसे नंबर पहला विषय है। आतंकवाद के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा का विषय है विश्व भर में, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग। सब जगह पृथ्वी में सब कुछ गर्म होते जा रहा है, और कहा कहते हैं कि भारत में 50 साल में तापमान 4 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी, माइक दीजिए। माइक कहाँ है? अच्छा, हरे कृष्ण।
जो उग्र काम हम जो कर रहे हैं, वो भगवान से है ना?
बुद्धि भगवान से नहीं आती, इच्छा हमसे आती है, वो गलत बुद्धि हमारी है, और उस बुद्धि से, उस बुद्धि के जो कार्य हैं, उसको करने के लिए भगवान की आवश्यकता हमें चाहिए। कोई गलत काम करने के लिए भी जब तक भगवान हमें सहायता नहीं करेंगे, तब तक हम उस गलत काम को भी नहीं कर पाएंगे, अच्छे काम को भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है अच्छे विचार रखना, अच्छे संग, अच्छा संग करना, जिस अच्छे संग से अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचारों से फिर अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म से अच्छी गति होगी। तो अपने विचारों के लिए हम जिम्मेदार हैं, भगवान जिम्मेदार नहीं है। भगवान केवल हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, जैसे हमारी योग्यता है वैसे भगवान इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए। तो ठीक है, बहुत बहुत। हाँ जी माता, आखिरी प्रश्न, यहाँ माइक दे दीजिए, पीछे पीछे माता जी से। कानों से, कानों से देखना चाहिए, श्रुतेक्षितम। हम जब भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में आदि सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, हृदय का शुद्धिकरण होगा। कानों से देखेंगे, आंखों से नहीं। हाँ, जब वृंदावन जाते हैं, आंखों से भी भगवान का दर्शन करते हैं, उनके धाम का, लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं अवश्य, परंतु जब तक कानों से हम नहीं देखेंगे, तब तक आंखों का देखना इतना मूल्यवान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को बार बार पढ़ना, मंदिर में आके सत्संग में भगवान के बारे में सुनना, नामोच्चारण करना, ये आवश्यक है। ठीक है, तो आज दोपहर में फिर से हम मिलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।